This is an ABP Life podcast.
तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जब हरिवंश राय बच्चन साहब ने अपनी कविता अग्निपथ में ये लाइनें लिखी होंगी, तब उन्हें क्या पता था कि अग्निपथ नाम की केंद्र की योजना के खिलाफ लोग रेल जलाते नहीं थकेंगे, सांसदों और विधायकों के घर तोड़ते नहीं थकेंगे। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ केंद्र द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना की। आर्मी रिक्रूटमेंट योजना है ये, एक देश भर में यही खबर छाई हुई है। और इसलिए नहीं क्योंकि लोग उत्साहित हैं इस योजना का फायदा उठाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग गुस्साए हुए हैं। स्टेशन से लेकर घरों तक इस योजना के खिलाफ नफरत की लपटें उठ रही हैं। सेना में भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव पर इस योजना को लेकर पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारी देश के अलग अलग हिस्सों में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जता रहे हैं। इसी बीच आज बिहार में लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली से भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। इस ट्रेन की 12 बोगी आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान जलती ट्रेन में यात्रा कर रहे एक बीमार शख्स की मौत भी हो गई। लखीसराय के डीएम ने एबीपी न्यूज को बताया कि यात्री बीमार था और ट्रेन से यात्रा कर रहा था। उसे लखीसराय के सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया ना जा सका। रेल मंत्री ने अपील तक की कि भैया रेलवे को नुकसान तो मत पहुंचाओ, ये तो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तुम्हारी भी है। मगर लोगों के सर पर रोष सवार है, वो कहां किसी की सुन रहे हैं। मगर जहां हम सब इस आगजनी की खबर अपने सामने टीवी और सोशल मीडिया पर चलती देख रहे हैं, वहीं कई लोगों को पता ही नहीं है कि प्रदर्शन आखिरकार हो क्यों रहे हैं और अग्निपथ योजना आखिर है क्या। तो आज एफआईआई पर हम बात करेंगे कि असल में अग्निपथ योजना क्या है और क्यों मच रहा है इस पर इतना बवाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप सभी के समक्ष हूं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश एफवाईआई पर। आज बात होगी अग्निपथ योजना की। तो सबसे पहला सवाल, क्या है अग्निपथ योजना? जवाब, भारत सरकार ने जून 2022 में रक्षा बलों यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अग्निपथ भर्ती स्कीम का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों की भर्ती अब सिर्फ 4 साल के लिए की जाएगी। आपको बताती चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के लिए है, ऑफिसर्स के लिए नहीं है, सोल्जर्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव की घोषणा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस योजना में सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती का प्रावधान है, साथ ही उन्हें रिटायर होने के साथ सेवा निधि पैकेज दिए जाने की योजना भी इस स्कीम में शामिल है। इस स्कीम के तहत सेना में शामिल होने वाले को अग्निवीर कहा जाएगा। सेना की इस नई भर्ती स्कीम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना के चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में लॉन्च किया। अग्निपथ योजना का लक्ष्य आर्मी सर्विस की प्रोफाइल को उपयोगी बनाना है, यानी कि वो सिर्फ रणभूमि के सैनिक ना रह जाएं, वो और भी बेहतर काम करें, अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जिएं। हर साल योजना के तहत 2 बार भर्ती होगी। हर भर्ती में 40 से 50 हजार भर्तियां होंगी। इसमें 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के लड़के फॉर्म भर सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। हालांकि नौजवानों का आक्रोश देखते हुए सरकार ने अभी अभी फैसला लिया है कि अब उम्र 23 साल तक बढ़ा दी जाएगी, मगर केवल इस साल के लिए। 21 साल की उम्र में क्या दिक्कत थी और युवा क्यों इस पर भड़के हुए हैं, ये सब हम आगे बताएंगे। फिलहाल बस हम बेसिक कोरा कोरा इस योजना को समझने की पहले कोशिश करते हैं। तभी तो हमें क्वेश्चंस आएंगे, तभी तो हमारे दिमाग में सवाल आएंगे जब हमें पता होगा कि ये योजना क्या है और किसके बारे में है। आगे बढ़ते हैं। योजना के तहत हर इंसान को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद वो लोग केवल बचे हुए 3.5 साल तक सेना में भर्ती रह सकते हैं एज अ सोल्जर। जहां युवाओं को पहले साल में 4,76,000 का पैकेज मिलेगा, यानी कि मोटा मोटी 40,000 पर मंथ मान लें, एक महीने का 40,000, जो चौथे साल तक बढ़कर 6,92,000 तक पहुंच जाएगा, यानी कि फिर से मोटा मोटी 58,000 एक महीने का मान के चलें। उसके बाद इस पूरी सैलरी का 30% कटेगा आपकी सेवा निधि का पैसा होगा, जो नौकरी के समाप्त होने के बाद इन्हें 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि मिलेगी, जो टैक्स फ्री होगी। समझ रहे हैं, मतलब अगर आपको महीने का 40,000 मिल रहा है तो उस पर से आप 30% आप काट लें तो 28,000 बचेगा। तो बेसिकली मोटा मोटी 28,000 के आसपास आपको मिलेगा, और उसके बाद जो आपका ये एक्स्ट्रा जो पैसा है वो आपको 4 साल बाद मिलेगा एज अ टैक्स फ्री फंड फॉर अग्निपथ स्कीम। इस योजना के कई मकसद हैं, जैसे कि सेना में जवान लोग ज्यादा भर्ती हों इसलिए उम्र कम रखी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि सेना के जवानों की औसत एवरेज आयु लगभग 32 से 33 वर्ष है। अग्निपथ योजना के साथ लगभग 8 से 10 वर्षों में हम सैनिकों की प्रोफाइल को लगभग 26 वर्ष तक कम करने में सक्षम होंगे। ये सेना को ज्यादा फिट बना देगा। अभी फिलहाल हम बस इस योजना के मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं। मैं दोबारा इसीलिए आपको ये रिपीट कर रही हूँ ताकि आप ये ना समझें कि ये सब हम कह रहे हैं, ये या तो सरकार बोल रही है या फिर उसके समर्थक बोल रहे हैं। हम इन सभी फीचर्स पर या सवालों पर आपको जवाब जरूर देंगे, आप हमारे साथ बस बने रहें। हम क्योंकि बात करने वाले हैं इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी से, जो इन सभी सवालों के बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। हमने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय से भी बात की है और वो भी बीच बीच में हमें थोड़ा ज्ञान देते रहेंगे। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू फोन पर दिया जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैं आपको खुद बताऊंगी कि उन्होंने क्या बोला है। आगे बढ़ते हैं। तो जी, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव का कहना है कि ये योजना गलत समय पर आई है। हमारे ऊपर हर तरफ से दुश्मन देश का खतरा मंडरा रहा है। 2020 में चीन ने दिखा ही दिया कि वो क्या कर सकता है। ये गलवान की बात हो रही है, पाकिस्तान भी उसी का दम भरता है। क्या इतनी छोटी उम्र के लड़के इन दिक्कतों को समझ पाएंगे? लाजमी सवाल है। एक मकसद ये भी है इस योजना का कि सेना को और ज्यादा हेटरोजेनस यानी कि विषम बनाना है। हर जगह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग टुकड़ियों में स्प्रिंकल कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। आपको बताती चलूं कि हमारी जो सेना है वो रेजिमेंट्स यानी कि बटालियनों में काम करती है। कोई गोरखा बटालियन है तो कोई राजपूत बटालियन है, मराठा बटालियन है। तो ये जो बटालियन है वो धर्म के आधार पर होते हैं, जाति के आधार पर भी होते हैं, और तो और रीजन के यानी कि जगहों के आधार पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार सेना पर हर साल काफी पैसा खर्च करती है। सरकार का कहना है कि सेना में लोगों की पेंशन और उनके रखरखाव का खर्चा बचे तो वो सेना के आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन में खर्चा करे। इस योजना से पहले ही लोगों को उनके हक का पैसा दे दिया जाएगा और ज्यादातर लोग तो 4 साल बाद ही सेना छोड़ देंगे, तो वो पैसा भी बचेगा और सेना जवान की जवान रहेगी। 11 लाख की पेंशन एक बार मिल जाएगी और जीवन भर पेंशन की झंझट से भी छुटकारा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव कई नए जमाने के देश कर चुके हैं और अब भारत भी इन्हें कर रहा है। इसराइल से लेकर के फ्रांस तक की दलीलें सरकार के लोग दे रहे हैं, इसके इस योजना के समर्थक दे रहे हैं। मगर जब मैंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय से बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि अब इसराइल हुए, फ्रांस हुए, इन देशों से हमारे देश की तुलना आप कैसे कर सकते हो। भारत कितने अलग अलग विभिन्न देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, हमारी दिक्कतें ही अलग हैं। हमारे आसपास दुश्मन मुल्क ज्यादा हैं जो एक तीली भर की दिक्कत का भी फायदा उठा सकते हैं। रामेश्वर रॉय ने ये भी कहा कि 6 महीने में कोई जवान सेना की बारीकियों को, उसके नुआंसेस को कैसे समझ पाएगा। सेना में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मनोबल, कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, उनके शब्दों में। वो बताते हैं कि सियाचिन में हर साल लड़ाई या कॉम्बैट से ज्यादा मौतें लोगों की वहां की ठंड के कारण होती हैं। तो हम कैसे 6 महीने में 18 या 20 साल के लड़कों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना मनोबल नहीं खोएंगे। साथ ही साथ जब आपका टेन्योर जो है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, आपको पता है कि 4 साल बाद बहुत कम चांसेस हैं कि आप सेना में ही सर्व करते रहें, तो उससे होता क्या है कि लोग ज्यादा सीरियस नहीं हो पाते अपने काम को लेकर, ऐसा इस योजना के आलोचकों का मानना है। उसी से हम आते हैं कि मैंने आखिर क्यों कहा कि कई लोग तो सेना में फिर भर्ती ही नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे, 4 साल उनका सर्विंग पीरियड है। वो मैं आपको बताती हूँ कि सर्विंग पीरियड के बारे में क्या बात है। तो इस योजना का एक बहुत ही अहम फीचर ये भी है कि जितनी भी भर्तियां होंगी उनमें से केवल 25% लोग ही सेना में बाकी 15 साल के लिए सेवा दे पाएंगे। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो केवल 25 लोग ही आगे सेना में सेवा दे सकते हैं। इस पर बाकियों के लिए सरकार का जवाब ये है कि जो बाकी 75% बचते हैं उन्हें ऐसे स्किल सेट दिए जाएंगे कि उनकी नौकरी लगना बहुत आसान हो जाएगा और नौकरी के लिए भी उन्हें 4 साल बाद पैसे मिलेंगे ताकि वो अपना खुद का कुछ व्यापार खड़ा कर सकें या नौकरी पा सकें। इस पर भी लोग आलोचना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, लोग हैं 21-22 साल के बच्चे हैं, ये सेना में जाएंगे, वहाँ पर 4 साल सर्व करेंगे और इसके बाद जब वो सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में वापस आएंगे तो उनका जो पढ़ाई का समय है वो तो काफी निकल चुका होगा। और इस देश में, जहाँ भारत में हर साल इतने ग्रेजुएट्स आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आते हैं और उन्हें ही नौकरी नहीं मिलती, तो इन्हें नौकरी कैसे मिलेगी, इन्हें नौकरी आखिर कौन देगा। और साथ ही में लोगों का ये भी कहना है कि जब आप आर्मी में होते हैं तो आपने काफी वायलेंस देखा होता है कई लोगों को, मतलब हम सुनते हैं अफगानिस्तान से लेके इराक में जिन लोगों ने सर्व किया है उन्हें PTSD हो जाती है। PTSD एक तरीके का दोस्तों डिसऑर्डर है जहाँ पर आप छोटी छोटी चीजों से वॉर को, युद्ध को एसोसिएट करने लगते हैं। कभी कोई पीला रंग देख के बेहोश हो जाता है, तो कभी बंदूकों की आवाजों से आपको पैनिक अटैक आ जाता है, टीवी पर अगर आपने बम फूटते हुए देख लिया तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है PTSD के। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ये और आप इन्हें केवल 4 साल सेना में भर्ती कर रहे हैं और फिर इनको छोड़ रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत ही डाइसी मामला है। आगे बढ़ते हैं। योजना AIAC यानी कि ऑल इंडिया ऑल क्लास के तहत काम करेगी। अब यहाँ पर बात आती है बटालियन की। आपको पता होगा कि सेना में बटालियन होती हैं अलग अलग ग्रुप्स की और ये बटालियन, अभी मैंने बताया कि जगह, जाति और धर्म के आधार पर होती हैं। मगर AIAC के तहत सभी जगह के लोगों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें अलग अलग बटालियन में उन्हें स्प्रिंकल कर दिया जाएगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेज सप्रू, जो कि पश्चिमी कमान के पूर्व GOC रहे हैं, उनका कहना है कि वो खुद गोरखा बटालियन से आते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह अलग अलग लोग अगर अलग अलग बटालियन का हिस्सा बनेंगे तो सही नहीं रहेगा। हर बटालियन की अपनी एक शान होती है, एक प्राइड होती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में गोरखा रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी कारण चीन अब तक नेपाल पर अपनी साख नहीं जमा पाया है और नेपाली भारत के प्रति वफादार इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक गोरखा रेजिमेंट है, बटालियन है बकायदा पूरी। अब अगर उसमें छेड़छाड़ होती है, जैसे कि पेंशन नहीं है, अगर भर्ती होने वाले लोगों की उम्रें कम कर दी जाएंगी या फिर उन्हें दूसरों से ऐसा और मिला दिया जाएगा, तो हो सकता है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में भी दरार आ जाए। तो ये तो थी अग्निपथ योजना और उसके कुछ पॉइंट्स जिनकी आलोचना हो रही है या जिनका समर्थन भी हो रहा है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब से, क्योंकि वो हमें देंगे ऐसा ज्ञान जो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही हमें दे सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सेना का हिस्सा रहे हैं, वो इस योजना के साथ साथ रणभूमि में लड़ने की बारीकियां भी समझते हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या मत रखते हैं। तो सर, आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना की, जो अभी केंद्र लाया है और उसपे 3-4 दिन से लगातार हम सुन रहे हैं कि कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं दंगा फसाद हो रहा है, कहीं कोई पुतले जला रहा है तो कहीं विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, काफी चीजें हो रही हैं। तो लोगों का जो गुस्सा है वो उमड़ उमड़ कर आ रहा है। तो सबसे पहला सवाल इस मुद्दे पर ये है कि क्या है असल में अग्निपथ योजना जिसके पीछे लोग यूं पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं अग्निपथ के बारे में डिटेल में समझाऊं, ये जो पथराव हो रहा है, ये जो वॉयलेंस हो रहा है, जो लॉलेसनेस हो रहा है, इसका कोई इस अग्निपथ से लेना देना नहीं है, ये मेरा मानना है। ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैंने कई टीवी चैनल में देखा पिछले 24-36 घंटे में, वो बता रहे हैं 8 साल के 10 साल के बच्चे पथराव कर रहे हैं, कुछ लड़कियां पथराव कर रही हैं, कुछ 35 साल के 40 साल के लोग पथराव कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी क्लियर कि जो हो रहा है, वो जो कर रहे हैं, वो फौज के भर्ती होने वाले लोग नहीं है। दे आर नॉट दी एस्पायरेंट्स टू ज्वाइन दी आर्म्ड फोर्सेस, अग्निपथ या अग्निवीर हो या ना हो, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इस तरह से, जिस तरह से पूरे देश में, नॉर्दर्न स्टेट से शुरू हुआ, पूरे देश में फैलता चला जा रहा है, हैदराबाद तक पहुँच गया है और नीचे पहुँच रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज मोटिवेटेड है। एंड मैं कहता हूँ इसमें बड़े दुख की बात है कि जो लोग देश की रक्षा करना चाहते हैं वो देश को जला भी रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के वीडियो में जो नजर आते हैं उनको एक पकड़ के पता करें ये लोग कौन है और ये पूरे देश में फैला दें कि इनको तो किसी हालत में भर्ती नहीं करेंगे। अब बात रही योजना की, देखिए जिस तरह से योजना शुरू में निकली थी, हम लोगों ने कईयों ने सोचा, इसके दो पहलू थे। पहला पहलू यह था कि इसमें सरकार की क्या जिम्मेवारी है, सरकार क्या करेगी, और दूसरा इसमें आर्म फोर्सेस की क्या जिम्मेवारी है, आर्म फोर्सेस क्या करेगी। तो पहले तो मैं आर्म फोर्सेस को बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये न लगे कि मैं ज्यादा सिविलियन में जा रहा हूँ। आर्म फोर्सेस में इसकी काफी मंथन हुई है, काफी डिस्कशन हुआ है, उसके बाद ये हुआ। हमें नहीं मालूम, हम रिटायर्ड है, कितना उनका मंथन हुआ, किस लेवल पे हुआ, आई डोंट नो, बट हुआ होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि चाहे कुछ भी सरकार का हुक्म हो, अगर भारत सेनाओं को ये सरकार हुक्म देती है तो भारत सेना उसको 100% कामयाब करती है, चाहे कुछ भी हो। That means Indian armed forces are never going to give a failure to this country in any matter. लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा और किस पर पड़ेगा वो जानना जरूरी है। देखिए आर्मी के अंदर एक यूनिट होती है जो कि बटालियन कहलाती है, रेजिमेंट कहलाती है। इन्फेंट्री में बटालियन कहते हैं, आर्मड कोर में रेजिमेंट कहते हैं, आर्टिलरी में रेजिमेंट कहते हैं, सिग्नल में रेजिमेंट कहते हैं, इस तरह से रेजिमेंट होती है। अब एक जो कमांडिंग ऑफिसर रेजिमेंट का होता है वो है हमारा असली आर्मी। उसके ऊपर ब्रिगेड कमांडर होते हैं, डिप कमांडर होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, आर्मी कमांडर होते हैं, वो सब एक्चुअल कॉम्बैट में नहीं जाते, वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं, इसकी सोच विचार करते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसकी टैक्टिक्स बनाते हैं। लेकिन डिलीवरी ग्राउंड पे एक कर्नल साहब करते हैं जो कि एक यूनिट के कमांडर, जिसको हम कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं, वो है बैकबोन। अब कमांडिंग ऑफिसर पर इसका क्या असर पड़ेगा वो देखना है। देखिए कमांडिंग ऑफिसर के पास अगर 100% स्ट्रेंथ फुली ट्रेंड हो, जैसे आजकल है, तो वो 100% रिसोर्स को इस्तेमाल करता है। उसमें से कुछ रिसोर्स उसकी छुट्टी पे होगी, कुछ रिसोर्स उसकी कहीं ट्रेनिंग में होगी, कहीं और कहीं किसी काम में होगी, तो समझिए 70-80% उसको अवेलेबल रहती है एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो वो 70-80% मैन पावर को यूटिलाइज करता है टू अकम्पलिश अ टास्क। उसके बाद अगर ये अग्निवीर आएंगे तो उसमें 20% अग्निवीर होंगे 100% में से। तो जो कॉम्बैट पोटेंशियल, जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी एक कमांडिंग ऑफिसर के पास है, वो 20% अग्निवीर की है और बाकी 70-80% जो बचे वो रेगुलर के पास है। अब टास्क आ गया बड़ा डिफिकल्ट, टास्क आ गया उरी जैसे अटैक में, उरी के याद है आपको, उरी में जैसे अटैक हुआ था। आपको टास्क आ गया गलवान में जाके चाइनीज के संग लड़ना है, आपको टास्क आ गया कैलाश रेंज पर हमें कब्जा करना है एक रात के अंदर, हमें टास्क आ गया कि कोई ड्रेडिस्ट टेररिस्ट को एम्बुश करके मारना है, कहीं श्रीनगर में, कहीं कश्मीर में वो आतंकवाद फैला रहा है, कहीं नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से हो रहा है। तो दीज आर ऑल वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इस टास्क में क्या कमांडिंग ऑफिसर फेलियर एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो जो भी कमांडिंग ऑफिसर है वो ही विल मेक श्योर 100% कि जो भी मुझे टास्क मिला है उसमें मैं ऐसा व्यक्ति भेजूँ जिस पर मुझे भरोसा है, जो मैं समझता हूँ इस कार्य के लिए ट्रेंड है, जो इक्विपमेंट इस कार्य में इस्तेमाल होगा उसको उस इक्विपमेंट को चलाना जानता है, उसी व्यक्ति को भेजेगा। जो आदमी, जो व्यक्ति 2 साल 1 साल 1.5 साल की नौकरी वाला होगा, जिसने ना तो पूरे हथियार सीखे होंगे, ना पूरा इक्विपमेंट सीखा होगा, ना उसको पूरा रेजिमेंटल एथॉस पता होगा, ना उसको उसकी डिसिप्लिन पर इतनी अच्छी होगी, उसको तो नहीं भेजेगा ना। तो जो चॉइस रह गई कमांडिंग ऑफिसर के पास वो लिमिटेड हो गई बाई 20%। कहते हैं इसका स्कीम में ये कहा जा रहा है कि दिस विल मेक द आर्मी यंगर एंड दिस विल मेक द आर्मी मोर टेक सेवी, टेक्नोलॉजी से इसमें बढ़ोतरी होगी। क्या ये बच्चे जो आ रहे हैं ये IIT ग्रेजुएट्स होंगे? क्या ये इंजीनियर हैं? क्या ये साइंटिस्ट हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करेंगे? ये जो 17 साल से 21 साल के बच्चे आ रहे हैं, ये तो मैक्सिमम इंटरमीडिएट होंगे, कोई 2-4 BA होंगे। इसमें IIT ग्रेजुएट्स अगर आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, लेकिन IIT ग्रेजुएट्स का इसमें आना थोड़ा असंभव सा लगता है। तो जो लड़के आ रहे हैं, जिस तरह से हमारी रिक्रूटमेंट होती रही आर्मी में, उससे ये लगता है कि दीज बॉयज विल कम इतने टेक सेवी तो नहीं होंगे, ना इतने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे कि ये टेक्नोलॉजी को आते ही अब्सॉर्ब कर लें। हाँ, इतनी टेक्नोलॉजी अब्सॉर्ब कर सकते हैं कि सेलफोन चलाना सबको आता है आजकल, लेकिन उसके आगे नाइट विजन इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें ड्रोन्स को कैसे ऑप्टिमली इस्तेमाल करना है, उसमें वैरायटीज।
एक आर्ग्यूमेंट लोग जो इसके समर्थक हैं योजना के, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी इन सब बच्चों को ये सब चलाना आता है, तो जब हम इन्हें टेक्नोलॉजी, एक्चुअल टेक्नोलॉजी दे देंगे वहाँ पे, तो वो भी आसानी से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सीख सकते हैं, क्योंकि 30-32 साल के जो लोग हैं वो शायद टेक्नोलॉजी को ही इतना कैच ऑन नहीं कर पाते हैं जितना शायद एक 18-19 साल का लड़का या लड़की कर पाए। उस पर आप क्या कहेंगे?
मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन एक बात समझिए कि जो टेक्नोलॉजी हमारे अंदर है आज, उस पर हम ट्रेनिंग कराते हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकली कोई भी रेडियो सेट हो, आर्टिलरी गन हो, टैंक हो, उस पे लगातार ट्रेनिंग होती है। चाहे टैंक को चलाना हो, कोई गन को फायर करना हो, कोई जायरोक्स कंपास चलाना हो, सबकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में 4 महीने 6 महीने के कोर्सेज चलते हैं। स्कूल ऑफ आर्टिलरी में आर्टिलरी का कोर्स चलेगा, आर्मर्ड कोर सेंट्रल स्कूल में आर्मर्ड कोर का चलेगा, इन्फेंट्री स्कूल में, हमारे यहाँ हर एक चीज़ का कोर्स होता है। अगर इन्फेंट्री की बात करें केवल, तो इन्फेंट्री में जो वेपन है उसका वेपन्स कोर्स चलते हैं। उसके अलावा हमारे टैक्टिकल कोर्सेज चलते हैं। आप समझें कि एकदम एक बच्चा आया, उसको 6 महीने में आप सब कुछ सिखा देंगे, तो मुझे ये संभव नहीं लगता। मैं काफ़ी दिन फौज में रह चुका हूँ, मैं काफ़ी देख चुका हूँ किस किस्म के जवान आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड होती है, वो सब हम लोगों ने देखी है, उसी एक्सपीरियंस हम कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति को अगर हमें सिग्नल्स प्लेटून में डालना है इन्फेंट्री बटालियन के, उसको रेडियो से जो किस्म किस्म के उनको चलाना आना चाहिए, उनको रिपेयर करना आना चाहिए, छोटी मोटी टूट फूट हो जाए उसकी ऑप्टिमल यूसेज होनी चाहिए। अगर वो एमएमजी चलाता है, रॉकेट लॉन्चर चलाता है, तो एम अच्छा ले सके, सही एमिनेशन को सेलेक्ट कर सके। आर्टिलरी गन में कितनी बातें होती हैं, वहाँ सर्वे करनी पड़ती है। आर्टिलरी गन 30 किलोमीटर आगे फायर करती है, अगर फायर कर दिया और गलत जगह चला गया तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। दीज आर ऑल वेरी डेंजरस एंड वेरी इफेक्टिव इशूज। सो इनमें कोई गलती की कोई गुंजाइश
नहीं
है। सो ए मैन हैज टू बी परफेक्ट। अब आप देखिए, आपने किसी एम्बुश में गए हैं, आपने एक टेररिस्ट को घेर रखा है, अनलेस यू आर बेटर देन हिम इन ट्रेनिंग, आपकी जो टैक्टिक्स है, आपकी जो बंदूक चलाने की सिखलाई है, जो एमिंग एंड बट हम कहते हैं 8-8, 10-10 साल तक लोग इतनी राइफल नहीं अच्छे तरह फायर कर पाते कि एक गोली से एक बुलेट जो आदमी को मार दें या टारगेट के सेंटर में लगा दें, जिसको बुल्सआई कहते हैं, उसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये व्यक्ति इतना ट्रेन नहीं होगा, जो मिलिटेंट है वो इसको इससे पहले मार देगा। आप तो समझ रही हैं इस बात को कि मिलिटेंट का सामना हो रहा है, उस समय तो एक गोली पर है सारा तारो, उसकी गोली पहले फायर हो गई आपको लग गई तो आप खत्म, आपकी गोली पहले फायर हो गई सही जगह लग गई तो वो खत्म। इट्स ए स्प्लिट सेकेंड डिसीजन, स्प्लिट सेकेंड। आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए कि जो लड़का गोली फायर करेगा उसकी गोली जरूर जाके ऐसी जगह लगेगी टारगेट पे जिस टारगेट को नष्ट करेगी। मैं हर तरफ से मानने को तैयार हूँ कि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजिकली काफी सेवी हैं, और ये भी देखना पड़ेगा वो सेवी जो है वो किस लेवल के सेवी हैं, उनकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर नोबडी कैन से मैं बिल्कुल सही हूँ, हो सकता है मेरी परसेप्शन ठीक ना हो। तो ये तो रहा आर्मी का पॉइंट
जी।
अब दूसरा जो इस बात पर पथराव नहीं हो रहा, जितनी डिबेट आज तक हुई है उसमें ये कोई नहीं कह रहा कि आर्मी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आर्मी विल डेफिनेटली मेक दिस प्लान सक्सेसफुल, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर के पास जब टास्क आएगा तो वो उन लड़कों से टास्क कराएगा जो 100% सक्सेस लाएंगे। केवल ये हुआ उसकी चॉइस अब कम हो गई, चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीपल में थोड़ी सी कमी आ गई, पर ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। लेकिन असली जो पथराव हो रहा है उस पर टिप्पणी करना ज्यादा जरूरी है, बनिस्बत इसके कि आर्मी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जब पथराव शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी 17 से 21 साल की उम्र में 2 साल पेंडेमिक की वजह से भर्ती नहीं हुई तो 2 साल इसकी एज बढ़ानी चाहिए, सरकार ने बढ़ा दी। उसके बाद फिर और पथराव हुआ तो उन्होंने कहा चलो जी 21 से 23 कर देते हैं, फिर भी पथराव बढ़ता रहा, उन्होंने कहा चलो 23 से 26 कर देते हैं। अब उन्होंने सरकार ने पहले ये कहा था कि अग्निवीर के आने से फौज की एज प्रोफाइल कम होगी, अब कहाँ कम हुई भाई, अगर 26 तक चले गए हो और एक न्यूज चैनल में मैं देख रहा शायद 28 तक भी जाना पड़ेगा, तो क्या एज कम हो गई? मुझे नहीं लगता एज कम हो गई। क्या आपने इसमें दूसरा पॉइंट जो सरकार कहती है कि लोगों को जॉब मिलेगा, बहुत बेरोजगारी है, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, 4 साल की एम्प्लॉयमेंट के बाद कहाँ जाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। तो सब सरकार ने इसको कहा नहीं हम इनको नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी देंगे, 10% असम राइफल में देंगे, इलीट फोर्सेज जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे कि SPG है, ITBF है, इनमें देंगे इनको रिजर्वेशन 10% का। तो क्या इनमें, इन फौजों में, NSG में, ITBP में किसी किस्म की कमी है क्या? दूसरी बात, क्या वहां जाएंगे तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वहां 4 साल करेंगे कि वहां पूरी सर्विस करेंगे, विल यू बी एलिजिबल टू पेंशन देयर? और तीसरी बात है पेंशन बिल, अगर आपने सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन रखा है और आप उम्मीद करते हैं कि कुछ अग्निवीर तो आर्मी में ही अब्सॉर्ब हो जाएंगे, कुछ परसेंटेज जो बाहर जाएगी वो हम पैरामिलिट्री में, एसपीजी में, एनएसजी में आप एम्प्लॉय करेंगे, तो वहां क्या पेंशन नहीं मिलेगी? वहां क्या पूरी सर्विस नहीं करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए आज हम लोगों को, हमें नहीं, पब्लिक मांग रही है। आपने कहा कि हमारा मुद्दा है पेंशन बिल को कम करना। अगर पेंशन आर्मी के फंड से नहीं जा रही तो किसी और के फंड से तो जा रही है, सरकार का तो पेंशन से जा रहा है ना। सो द पॉइंट अराइजेस कि यू आर ओनली मैनिपुलेटिंग, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं कि किसका खर्चा कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। और ये सब कंट्रीज कर रही है, चाइना भी कर रही है, टेक्नोलॉजी ला के मैन पावर को कम कर रही है। मैन पावर इज अ वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्स, तो हम भी मैन पावर को कम कर सकते हैं। अगर हमारी आज सेना 14 लाख की है, तो अगर थर्ड परसेप्शन सरकार करती है आर्म फोर्सेस इनकम बैठ के, तो उस नतीजे पर पहुंचेगी कि जी हम 1,000 आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी, 1,00,000 आदमी कम कर सकते हैं। मुझे चाइना के बरखिलाफ कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे टेररिज्म से लड़ने के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे पाकिस्तान के संग लड़ने के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ थ्रेट परसेप्शन। जितनी थ्रेट आप देखते हैं उसके मुताबिक आप आर्मी को बनाइए, आर्म फोर्सेस को बनाइए, और वहां का अगर कटौती हो सकती है तो उसको काटें। उसमें क्या होता है कि जब कटौती की बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव टेल जो है आर्मी की उसको घटा के कॉम्बैट स्ट्रेंथ को वही रखें। उससे क्या होता है कि ये बड़ी समझने की बात है, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज ए फ्रंटलाइन टैक्टिकल। ये कई एक लड़ाइयों में साबित हो चुका है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई में साबित हो रहा है। लॉजिस्टिक्स आपने कई दफा टीवी में सुना होगा, रशिया की लॉजिस्टिक्स में थोड़ी सी कमी पाई गई थी शुरू में, सुना था आपने ये कि वो लॉजिस्टिक ट्रेन नहीं आ पा रहे हैं। तो जितने सरकार के, आई एम फुल एग्रीमेंट, जो सरकार के बेसिक मुद्दे थे जिस वजह से अग्निपथ आया है, वो है जॉब क्रिएशन।
बात कर रहे हैं ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंटेशन की, कि हर जगह से, हर कोने से लोग आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उस पे भी लोग काफी सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि जनरल सप्रू हैं, उन्होंने ये बोला है कि जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत डिपेंडेंट है गोरखा रेजिमेंट्स पे, तो अगर आप उनमें, उनकी रेजिमेंटेशन में ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे तो एक तो अर्थव्यवस्था भी थोड़ी डामाडोल होगी, दूसरा गोरखाओं की अपनी एक प्राइड है, जैसे राजपूत प्राइड है, तो आप कैसे आप लोगों को उसमें डाल सकते हैं?
देखिए, आपने स्प्रिंकलिंग कहा ना, कैसे है स्प्रिंकलिंग भाई? आपने तो कहा है कि 2030 तक ये 50-50 हो जाएगा, कि कुछ 10 साल 12 साल में हम ये फिगर ला देंगे कि 50% या 40% अग्निवीर होंगे और बाकी रेगुलर होंगे। और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि गोरखा रेजिमेंट पूरे गोरखास की होती है, राजपूत राजपूत की होती है, पंजाब पंजाब की होती है, सिख सिख की होती है, मराठा मराठा की होती है। वो एक कौम के जरिए लड़ते हैं, वो कौम के लिए लड़ते हैं, वो देश के झंडे के लिए लड़ते हैं कौम बन के। मराठा जो है उसकी, हमारी हर एक यूनिट के अंदर, रेजिमेंट के अंदर वॉर क्राई होती है। मराठा रेजिमेंट की वॉर क्राई क्या है? छत्रपति महादेव शिवाजी, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये सब रेजिमेंटल है। ये जो बोले सोनिया शास्त्री काल किसकी होगी? सिख रेजिमेंट की होगी।
सिख
शिवाजी का जो नारा लग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज, वो किसकी होगी? मराठा रेजिमेंट की होगी। हर एक रेजिमेंट, अब आप कमाऊ रेजिमेंट देख लीजिए, गढ़वाल रेजिमेंट देख लीजिए, सबकी अपनी अपनी वॉर क्राइज हैं। सो उस चीज को तोड़ना मेरे ख्याल से इस समय ठीक नहीं है। अभी वी हैव नॉट येट रीच्ड द स्टेज, रेजिमेंटेशन ऑफ रेजिमेंट्स एज प्रेजेंट has stood the test of time, कहते हैं जिसको। उन्होंने ये साबित कर दिया, सप्रू साहब ने बिल्कुल सही कहा, नेपाल का रिलेशनशिप भी एक बात है, लेकिन गोरखास के अंदर आप सिख डाल देंगे या सिख के अंदर आप गोरखा डाल देंगे तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन
सेंस ऑफ बिलोंगिंग मुझे ऐसा लगता है कि
हाँ वही है ना। एक बात मैं आपको और बताऊ, बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है, हम लोग एक गांव से भी लोग आते हैं, एक एक गांव से 20-20 लोग आते हैं, और वो उस चीज से भी डरता है, एक सिपाही डरता है अगर लड़ाई में जा रहा है, कारगिल की लड़ाई में जा रहा है, तो वो डरता है कि अगर मैंने कोई इसमें कावर्डस दिखाई तो ये मेरे घर में जाके बता देगा, ये तो देखो डरपोक आदमी है, लड़ाई में नहीं गया था, डर के पीछे पत्थर के पीछे बैठा था, उसकी बदनामी हो जाएगी। ये भी है कि इफ यू आर नॉट एबल टू डू वेल इन द वॉर, अगर लड़ाई में आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो आपके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। हम तो 10-15 साल के आगे की बात कर रहे हैं ना, हम तो कल परसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो स्प्रिंकलिंग की बात नहीं कर रहे हैं ना कि स्प्रिंकलिंग होगी। हमने खुद ही कहा है कि 30 साल 20-30-32 तक 40-50% अग्निवीर रहेंगे, 40-50% रेगुलर रहेंगे, 50% रेगुलर रहेंगे, ऐसी बात हुई है ना।
रिटायर्ड जनरल रामेश्वर राव साहब ने कहा है जो टेरेन है हमारे इंडिया की वो इतनी डाइवर्स है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों के वो सियाचिन जैसी जगह पर कहीं लड़ पाए या फिर कोई और हिमालयन टेरेन पर लड़ पाए। सियाचिन में स्पेशली उन्होंने मुझे बताया कि वेदर की वजह से ज्यादा वहाँ पे मौतें होती है बजाय कॉम्बैट के, उस पर सर आप क्या कहेंगे?
रामेश्वर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आर्मी के अंदर हमें कई एक किस्म के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। हम करते हैं अपोज कैनाल क्रॉसिंग ऑपरेशन, अपोज रिवर क्रॉसिंग ऑपरेशन, डेजर्ट ऑपरेशन, बिल्ट अप एरिया ऑपरेशन, माउंटेन वॉरफेयर ऑपरेशन, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। तो इन सब की अलग अलग ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग अलग होती है, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड सियाचिन की अलग होती है। कैनाल क्रॉसिंग करनी होगी जहाँ पे पंजाब में अगर कहीं जाना पड़ता है तो कैनाल क्रॉसिंग होगी, डीसीबी डिच एवं बंद की ट्रेनिंग होती है। डेजर्ट्स में जाना पड़ेगा राजस्थान के जैसलमेर एरिया में तो डेजर्ट ट्रेनिंग होती है, डेजर्ट ऑपरेशंस की उनकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है, उसकी अलग अलग बनावट होती है सब। अगर आज मेरी यूनिट डेजर्ट्स में है तो मैं उसकी डेजर्ट ट्रेनिंग कराता हूँ, कल को वहां से जिसका टेन्योर खत्म हो जाता है 3 साल का तो वो चली जाती है कश्मीर में, वहाँ मुझे उसको काउंटर टेररिस्ट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल में जाती है तो उसको माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। सो हर एक जगह ट्रेनिंग का फर्क आता है। जैसे आपने सियाचिन में कहा कि फिजिकल कैजुअलिटी ज्यादा होती है बनिस्बत ऑपरेशनल कैजुअलिटी, ये सही कह रही हैं आप। उसमें मैं समझता हूँ कि यंग बच्चे विल डू बेटर, एक बच्चा जो 17 साल का है वो एक आदमी 35 साल से बेटर करेगा शायद, उसकी लंग स्ट्रांग है। सो आई डोंट सी दैट एज अ प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है कि उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं।
आई थिंक सर मेरे यहाँ सवाल खत्म हो चुके हैं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज का जवाब भी नहीं कहूंगी, आपने एक्सप्लेन खुद ही कर दिया, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो थैंक्स सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टॉकिंग टू अस ऑन दिस पॉडकास्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।
नाइस मीटिंग यू ऑन द टीवी।
तो जी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने हमें काफी बेहतरीन ज्ञान दिया इस योजना के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी को इस योजना से संबंधित ज्ञान समझ आया होगा। ये भी समझ आया होगा कि नौजवान जिन्हें भारत की रक्षा करने के लिए सेना में जाना था वो आखिरकार क्यों खुद ही देश को फूके दे रहे हैं। ये एक तरीके का आयरनी है, मजाक चल रहा है। मजाक की बात करें तो मजाक तो ये भी चल रहा है कि अब सरकार के बुलडोजर कहाँ गए, मगर खैर मजाक तो चलता ही रहेगा, खबरें भी आती रहेंगी और अगर आप हमारे साथ बने रहे तो आपको भी खबरें और मजाक सब मिलती रहेंगी। आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI, आवाज है मेरी यानी कि साहिबा खान की और पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित ने। मिलेंगे अगले FYI में, अपना ख्याल रखें, कोविड बहुत बढ़ रहा है, मास्क लगाकर ही बाहर निकले। अब मैं चलती हूँ, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस, डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
This is an ABP Life podcast.